नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस महामारी के दौरान दुनिया भर में लॉकडाउन किए जाने से ऑफिस का काम घर से करने के लिए विवश होना पड़ा था। इसको लेकर दुनिया भर में कई कंपनियां ऑफिस कल्चर को वर्क फ्रॉम होम कल्चर में शिफ्ट करने के तौर तरीके पर विचार कर रही हैं। भारत में भी इस पर जरूरी दिशा निर्देश तैयार करने की कवायद काफी दिनों से जारी है। इसके साथ ही काम करने के घंटे और छुट्टी पर भी चर्चा जारी है। मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने देश भर की कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियमों की घोषणा की, जिसके अनुसार वर्क फ्रॉम होम को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। साथ ही इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या को 50% तक बढ़ाया जा सकता है। वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में वर्क फ्रॉम होम के लिए एक नया नियम 43A अधिसूचित किया है। केंद्र द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के कई अनुरोधों के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय के एक नोटिस के अनुसार सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में देशव्यापी समान वर्क फ्रॉम होम नीति का प्रावधान करने के लिए उद्योग की मांग पर नियम तैयार किए गए हैं। नया नियम विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी के लिए घर से काम करने का प्रावधान करता है। कर्मचारियों का वह वर्ग जिसके लिए वर्क फ्रॉम होम के नियम जारी किए गए हैं, वे IT, ITS, SEZ इकाइयों के कर्मचारी हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र की धारणा अप्रैल जून तिमाही के दौरान थोड़ा कमजोर हुई, लेकिन ये सकारात्मक बनी हुई है। नाइट फ्रैंक इंडिया नारेडको का रियल एस्टेट धारणा सूचकांक दूसरे तिमाही में घटकर 62 अंक पर आ गया। ये जनवरी मार्च तिमाही में 68 अंक पर था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख नीतिगत दर रेपो में दो दौर की कटौती की वजह से ये सूचकांक जून तिमाही में थोड़ा नीचे आया। धारणा सूचकांक आपूर्ति पक्ष के अंशधारकों, मसलन डेवलपर्स, निवेशक और वित्तीय संस्थानों के सर्वे पर आधारित है। इस सूचकांक के 50 से ऊपर होने का मतलब धारणा के सकारात्मक होने से है, वहीं इसके 50 से नीचे होने का आशय नकारात्मक धारणा से है। नाइट फ्रैंक इंडिया नारेडको ने कहा कि मई और जून में रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में दो बार वृद्धि की गई। इसकी वजह से मौजूदा धारणा सूचकांक में गिरावट आई है। अगले 6 माह के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र का परिदृश्य सकारात्मक है, लेकिन ये मार्च तिमाही की तुलना में इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ दिवाला समाधान कार्रवाई शुरू करने के बैंक ऑफ इंडिया की अपील को स्वीकार कर लिया। न्यायाधिकरण ने इस बारे में अमेजोन की आपत्ति को खारिज कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया की अपील को स्वीकार करते हुए NCLT ने विजय कुमार अय्यर को FRL का समाधान पेशेवर नियुक्त किया। FRL ने बैंक ऑफ इंडिया के कर्ज के भुगतान में चूक की थी। इसके बाद इस साल अप्रैल में बैंक FRL के खिलाफ NCLT में गया था। वहीं 12 मई को अमेजोन ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता की धारा 65 के तहत इस मामले में हस्तक्षेप की अपील दायर की थी। अमेजोन ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा था कि बैंक ऑफ इंडिया और FRL के बीच साठगांठ है। अमेजोन ने कहा था कि अभी इस मामले में दिवाला कार्रवाई शुरू करना उसके अधिकारी के साथ समझौता होगा। डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी हेडसन एग्रो प्रोडक्ट्स की बिक्री चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पहली बार 2,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। कंपनी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि अप्रैल जून तिमाही में उसने 2,014.60 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। एक साल पहले की समान अवधि में ये 1,538.78 करोड़ रुपए था। कंपनी के चेयरमैन RG चंद्रमोगन ने कहा कि महामारी के बाद घरेलू बाजार के हालात सुधरने और गर्मियों के दौरान मांग बढ़ने से बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ घटकर 51.95 करोड़ रुपए पर आ गया। इससे पिछले साल की अप्रैल जून तिमाही में ये 58.33 करोड़ रुपए रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ITC लिमिटेड ने कहा है कि महंगाई की चिंताओं के बावजूद वह मजबूत वृद्धि की राह पर आगे बढ़ती रहेगी। कंपनी की सालाना आम सभा को बुधवार को ऑनलाइन तरीके से संबोधित करते हुए ITC के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने कहा कि कंपनी के रोजाना उपभोग के सामान क्षेत्र में करीब 25 ब्रांड है। उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो का चयन सावधानी से किया गया है और इसमें वृद्धि की काफी गुंजाइश है। पुरी ने कहा कि ITC की आकांक्षा इन FMCG ब्रांड को विदेशी बाजार में ले जाने की है। कंपनी भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं में निवेश जारी रखेगी। रणनीतिक गठजोड़ के जरिए कंपनी नए बाजारों का विकास करेगी। पुरी ने बताया कि आईटीसी ने साल के दौरान 110 उत्पाद पेश किए। उन्होंने शेयर धारकों को बताया कि कंपनी ने देश भर में एकीकृत उपभोक्ता सामान विनिर्माण और लॉजिस्टिक सुविधाओं का निर्माण किया है, जिससे ये संरचनात्मक लाभ की स्थिति में है। पुरी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां अब सामान्य हो गई हैं और महामारी पूर्व के स्तर से आगे है। ऐसे में कंपनी के परंपरागत सिगरेट कारोबार की स्थिति भी सुधरी है। उन्होंने बताया कि कंपनी के कृषि कारोबार का प्रदर्शन भी अच्छा रहा और गेहूं, चावल, मसालों और तंबाकू की निर्यात वृद्धि मजबूत रही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।